لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صدق الله العلي العظيم. اللهم أنت الإله القديم، وهذه سنة جديدة، فأسألك العصمة والقوة والاشتغال يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. 1443 ہجری کا ایام عزا کا پہلا مہینہ، ایک بار پھر احتیاطاً یہ یاد دلا دیا جائے کہ ہماری یہ مجلس الاصر اسلامک سینٹر میلبرن میں ہو رہی ہے، اور میلبرن آسٹریلیا کا ایک شہر ہے، تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں محرم کے مہینے کی رویت یعنی مون سائٹنگ باقی ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دن بعد ہوئی ہے. تو آج کی مجلس سے لے کر آخری مجلس تک جو لوگ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے باہر رہتے ہیں ان کو شاید تاریخوں میں تھوڑا کنفیوژن رہے. میلبرن یعنی آسٹریلیا کے اعتبار سے پہلی محرم کا دن ختم ہوا ہے اور دوسری کی شب لگی، لیکن جو ہمارے یہاں عام طور پہ جس طرح سے ڈیٹس بتائی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یکم محرم فرسٹ آف محرم کی مجلس ہے. اور ایک وضاحت یہ بھی کر دی جائے کہ آج صبح، بات ہو رہی ہے میلبرن کے ٹائم کے اعتبار سے، میلبرن میں لاک ڈاؤن ایک ہفتے اور ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. تو جو میں نے کل رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ تین دن یہ لاک ڈاؤن باقی ہے، اس کے بعد شاید مجالس ادا خانے کے اندر اس طرح ہوں کہ مومنین بھی شریک ہو سکیں، آج صبح کے اعلان کے بعد اب صورتحال یہ ہوئی کہ شب عاشور تک کی جو مجلس ہے وہ اسی لاک ڈاؤن کی حالت میں ہوگی اور آن لائن ہی مجالس ہوں گی. البتہ الاصر اسلامک سینٹر کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے امام باڑے بنائے جاتے ہیں، عزا خانے بنائے جاتے ہیں، عاشور خانے بنائے جاتے ہیں، حسینیہ بنائے جاتے ہیں، کیا ایام عزا مومنین آئیں، صف عزا بچھائی جائے، مجالس ہوں، اس کے حساب سے ہی یہ مجالس ہوتی رہیں گی. عام مومنین اگر نہیں آ سکیں گے قانون کی وجہ سے، رولز اینڈ ریگولیشن جو گورنمنٹ کے ہیں، تب بھی کیونکہ لائیو براڈ کاسٹنگ کی اجازت ہے تو امام بارگاہ کھلے گا اور کھلا ہوا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں بہت دور سے ڈرائیو کر کے یہاں پہ آتا ہوں، خود ڈرائیو نہیں کرتا ہوں لیکن بہت دور سے آتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یہ سیف عزا بچھے، عزا خانہ سجے، یہ تبرکات بھی آپ کے سامنے ہوں، اور عزا خانہ مثلا جو چراغ جلائے جائے یا لائٹ جلائی جائے، خالی یہ کافی نہیں، شہزادی کونین بھی صف عزا پہ آ کے بیٹھے، جس کے لیے مجلس بھی عزا خانے کے اندر. ہاں اگر کبھی کوئی ایسا قانون آ گیا کہ جس میں اس پہ بھی پابندی لگ جائے گی تو پھر وہ الگ بات ہے، وہ یقیناً مجبوری ہوگی. یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ کل رات کی مجلس میں یہ عرض کر چکا تھا کہ تین دن کے مجالس لائیو براڈ کاسٹنگ ہے اور باقی شاید اس کے بعد मोमिनीन भी आने लगे हैं, तो आज सुबह के ऐलान के बाद सूरत हाल बदली है और फिलहाल आशूर का दिन मेलबर्न के कैलेंडर के एतबार से जो 28 अगस्त फ्राइडे है उस दिन लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर अदा खाने में ही मजलिस होगी और अगर उस दिन भी लॉकडाउन हो गया तो उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। अब जो इतनी बात मैंने की तो इसके हवाले से बात को आगे बढ़ाने के लिए एक जुमला रब्त देते हुए, अच्छा पहले ये मैं याद दिला दूं कि हमारा इस अशरे का यानी 1443 हिजरा के अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न के इस अशरे का उन्वान या टॉपिक है इमाम जमाना विलायत अली और दज्जाले मेलबर्नी। और जो गदीर की महफिल मैंने पढ़ी थी 10 दिन पहले 12 दिन पहले, उसमें आखिरी महफिल में एक जुमला मैंने कहा था जिससे फिर रब्त दे के अपने मौजू को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी 2-3 छोटी छोटी तमहीदी बातें आपको याद दिला दूं। इमाम जमाना, विलायत अली और दज्जाले मेलबर्नी। अब ये इतना लंबा मौजू मैं रोज तो नहीं बता सकूंगा, मुख्तसर करके इमाम जमाना और विलायत अली। पहले तो ये वाजे कर दिया जाए कि आशूरे की बहुत ज्यादा मैचिंग है इमाम जमाना के जहूर से, और ये इंशाल्लाह आगे की किसी मजलिस में तफसील आएगी, लेकिन बहुत ही मुख्तसर, जुमे का दिन था और 10 मुहर्रम की तारीख थी जब करबला में आका हुसैन को शहीद किया गया, और जुमे ही का दिन होगा और 10 मुहर्रम की तारीख होगी जब जहूर इमाम जमाना होने की अजहद तवक्को है। इतनी ज्यादा कि बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि बिल्कुल ये यकीनी बात है कि डे होगा फ्राइडे और डेट होगी 10th of मुहर्रम। तो जैसा कि मैंने कहा कि मजीद इस पर गुफ्तगू एक आध दिन के बाद होगी जब इमाम जमाना पर बराह रास्त हम बात शुरू करेंगे। एक छोटी सी बात की वजाहत करूं, और ये छोटी सी बात चूंकि आगे चलकर 2 या 3 मजालिस का उन्वान बनेगी, इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत अहम बात है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आज एक छोटी सी बात, और वो ये है कि जो इस्लाम की शरीयत है, जो दीन के अहकामात हैं, जो फिक्र जाफरी है, ये लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन का मजमुआ, और जो कवानीन होते हैं ना उसके अंदर हमेशा याद रखिए इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा होते हैं। दुनियावी कानून में तो आप इस बात को जानते हैं, दीनी कानून में भी ये चीज है। चुनाचे कभी भी इस गलत फहमी में मुब्तला ना होइएगा कि अगर कोई मसला है तो बस वो मसला जो उसकी वर्डिंग आ गई है उसी तरह से होगा, उसके अंदर कोई इफ एंड बट शामिल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहता हूं, तो मुख्तसरन ये बात अर्ज कर दूं कि फिलहाल हमारे मराजे का एक फतवा है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे मोमिनी मराजे कराम के मुखालिफ भी हो चुके, जो पहले थे वो थे, लेकिन फिलहाल की बात कर रहा हूं, और वो ये कि अगर आपके मुल्क की हेल्थ मिनिस्ट्री या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मना कर रहा है इज्तिमा को और उसमें मजलिस भी शामिल है, तो आपको उसकी उस कानून की पाबंदी करना, यू हैव टू ऑनर द लॉ ऑफ द लैंड इस हवाले से। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि तारीख इस्लाम में तो बहुत सारे जालिम गुजरे जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना के मुल्क में नाफिज किए कि जिसके अंदर आजादारी या मजलिस हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मुतवक्किल हो, चाहे वो सद्दाम हो, और चाहे वो इन बिटवीन जो दूसरे जालिम आए हुए हैं। तो अब ये सारी गलतफहमी इसलिए पैदा होती है कि भाई वो फिर उस जमाने में क्यों मजलिसें होती थी और लोग कुर्बानियां दे के मजलिसें करते थे और लोग अपने गर्दने कटवा के मजलिसें करते थे। अब ये سارے مسئلے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ مومنین کے پاس ٹائم نہیں ہے پورا مسئلہ سننے کا، یا یہ کہیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پورا مسئلہ سننے سے، وہ ایک انکمپلیٹ بات سن کر اسی کو لے کے دوڑ اٹھتے ہیں. اب میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا آج کا جو موضوع ہے، جو آج کل رات کی مجلس کو آج مکمل کرنا ہے تاکہ امام زمانہ اور ولایت علی پہ بات کل سے شروع کی جائے آنے والی کل، لیکن یہ بات میں ڈیٹیل میں نہیں بتا پا رہا ہوں، لیکن مختصر یہ بتا دوں کہ مثلا اب ہم باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ساری یعنی باقی چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ اور گیدرنگ چھوڑیں، خالی مجلس پر آ جائیے. مراجع کرام کا فتویٰ مجلس کے حوالے سے کیا، اور وہ صدام اور متوکل کی مجلس کی پابندیاں، اور اس وقت دنیا کی مختلف حکومتوں کی طرف سے جو پابندی، ابھی ایک مومن سے بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ ہندوستان کے بھی کئی شہروں میں یہی مسئلہ ہے. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلے کو سنیں. اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، لیکن کیونکہ یہ مسائل بیان کرنے کا تو فورم نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اگر دشمنی اہل بیت کی بنا پر مجلس کو روکا جا رہا ہے تو اس قانون کو توڑنا اور اس کی مخالفت کرنے کی اجازت بھی ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر ہیلتھ کے ایشو کی بنا پہ اس کو روکا جا رہا ہے تو اس قانون کو ماننا واجب ہو جاتا ہے. کبھی اس قانون کو توڑنا واجب ہے، کبھی اس قانون کو ماننا واجب ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے یہ قانون کس نیت کے ساتھ بنایا. دشمنی اہل بیت کی نیت ہے تو چاہے وہ متوکل ہو، چاہے وہ صدام ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ کوئی ملک بھی ہو، آپ توڑ سکتے ہیں اس قانون کو. یہ توڑ سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھپ کے بھی مجلس کریں، اور کبھی کبھار واجب ہو جائے گا توڑنا اگر یہ خطرہ ہو رہا کہ مجلسے چھپ کر کرنے کے نتیجے میں آزاداری نہ ختم ہو جائے. لیکن جہاں ہیلتھ ایشو مسئلہ، جہاں ہمیں پتا ہے کہ وہ دشمنی اہل بیت کی بنا پر ہماری مجلس پہ پابندی نہیں لگا رہے ہیں، وہ یہی پابندی اپنے کرسمس کے بھی لے لی لگائیں گے، یہی پابندی جوس کے تہوار کے لیے لگائیں گے، یہی پابندی دوسرے مسلمان فرقوں کے لیے، وہاں مسئلہ چینج ہو جائے گا. اور اس حوالے سے ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، ورنہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بہت چھوٹے چھوٹے دو تین اشارے کر دوں کہ عام بیماریاں جو ہیں اس میں بھی یہ پابندی آ جاتی تھی. مثلا پہلے زمانے میں ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی تھی، پہلے سے مطلب 500 سال پہلے نہیں، ابھی چند سال پہلے تک، ٹی بی کی بیماری. اب اگر کسی کو تپ دق ہے یا ٹی بی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جو پھیل سکتی ہے، تو اس کے لیے مجلسوں میں جانا بھی جائز نہیں تھا. اب یہ پابندی مجلس پر نہیں لگائی جا رہی کہ جی وہ مومن ہے، اس کا دل بھی تڑپ رہا ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں صفحہ عذاب پہ جا کے بیٹھوں. نہیں، تمہاری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا. یا یہ کہ ایک بیماری اور ہوتی تھی، کوڑھ، جزام، جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتی اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا. تو یہ کچھ بیماروں کی کیٹیگریز اس مسئلے سے ہٹ کر تھی، دل ان کا بھی چاہ رہا ہے، عزاداری وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ عزاداری اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوال مجلس کے حوالے سے کیا گیا، ورنہ یہی اصول عزاداری سے ہٹ کر حج کے لیے بھی ہوتا، عمرے کے لیے بھی ہوتا، قرآن کے کمپٹیشن کے لیے بھی ہوتا، جو بھی گیدرنگ ہوتی، کہ اگر ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو لگ سکتی. اچھا، وہ بیماریاں ہوتی تھی انڈیویجولس کو، تو اس کے اوپر پابندی آ گئی. اور کووڈ جو ہے یہ پینڈیمک ہے، یہ کوئی انڈیویجول کی بیماری نہیں. اور کووڈ کا بھی جو اس وقت چوتھا وائرس آیا ہے ڈیلٹا، کہ بہت تیزی سے within 10 یا 12 سیکنڈ یہ دوسرے کو پکڑ لیتا. تو یہاں پہ وہی مسئلہ، جو پہلے ایک آدمی کے اوپر پابندی تھی، اب سب پر پابندی آ گئی، تو یہ ہیلتھ ایشو کی وجہ سے ہے. اور یہ فرق شریعت کے مسئلے میں ہمیشہ رہے گا، باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات کی جائے گی. اب یہاں پہ ایک سوال اور ایسا آتا جس سے میری اپنی گفتگو کل رات کی گفتگو سے مل جائے گی، کنیکٹ ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں غم امام ہو، اس کے گھر میں صفحہ عذاب بچھے کم از کم سال میں ایک مرتبہ. صحیح، بالکل صحیح ہے، یہ بات ہونا بھی یہ چاہیے. کل رات کا جو میں نے اتنے عظیم مراجع کا واقعہ بیان کیا تو دونوں نام اس کے اندر اتنے بڑے، شیخ وحید خراسانی جن کے کان میں منہ رکھ کے ان سے بھی عظیم مرجع آقا عبدالحادی شیرازی نے پورا وہ واقعہ سنایا، تو اس کے اندر آخر میں جو بات آئی تھی اور وہی طریقہ شیعت کا ہمیشہ رہا ہے، وہ کیا؟ مجلس کرو گھر، کس نے روکا؟ روکا کیا مطلب؟ ثواب ہے، فضیلت ہے، تاکید ہے، پینڈیمک میں بھی کرو، لیکن مجلس کا مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 500 آدمی آ جاؤ، 100 آدمی آ جاؤ، 50 آدمی آ جاؤ تبھی مجلس ہوگی، اور اگر خالی شوہر اور بیوی اور دو بچے بیٹھ کر کوئی نوحہ پڑھ لیں اور کوئی بیان کتاب سے پڑھ لیں تو مجلس نہیں ہوگی؟ یہ تصور ہی کہاں سے آیا کہ مجمع ہو تب مجلس ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ عبادتوں کی دو قسمیں، کچھ عبادتوں میں اسلام نے واقعا یہ شوق دلایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تو ثواب بڑھتا جائے گا، جس کی اہم ترین مثال نماز جماعت، دو آدمی کی جماعت ہو تو ثواب کم ہے، چار ہو تو ثواب زیادہ ہے، ڈبل نہیں ہے، کئی گنا زیادہ، نو ہو تو اتنا، اور 10 سے زیادہ ہو تو سارے فرشتے مل کے ثواب نہیں لکھ سکتے، وہ نماز جماعت کے لیے، اور نماز جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے روزانہ ملے اور کلوز ہو، لیکن مجلس کے لیے پابندی کبھی نہیں آئی، اگر ایک اکیلا مومن بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر کتاب کھول کے چند مصائب پڑھتا ہے اور آنسو بہاتا، اور اسی لیے کل والی جو حدیث تھی جو بہت مشہور ہے اس کا تیسرا ٹکڑا، روتا ہے رولاتا ہے یا تباہ کا رونے والی جیسی شکل بنا کے بیٹھ جاتا مجلس ہو گئے، وہ یقین رکھے کہ اس کے گھر میں شہزادی فاطمہ آئی ہیں، صفحہ ازا کا اس کا سارا ثواب ملا ہے، صفحہ ازا کی ساری برکتیں ملی، تو یہ جو دو چیزیں لوگوں نے خود ہی سے کنیکٹ کر لی کہ مجلس کا ثواب، مجلس کی برکت، مجلس کی فضیلت، شہزادی کونین کی آمد، اور پھر مجمع ہونا چاہیے، ورنہ شاید برکتیں آدھی رہ جائیں، شاید فضیلتیں کم رہ جائیں، شاید ثواب کم رہ جائے، شاید شہزادی نہیں آئے کہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی، یہاں 5 آدمی ہیں، اس گھر میں جاؤں گی وہاں 500 آدمی، اس نے نہیں سمجھا اہل بیت کو، اس نے نہیں سمجھا آزاداری کو، اس نے نہیں سمجھا فاطمہ زہرا کے کریمہ ہونے کو، تو وہ جو ہے جیسے کل کا واقعے میں یہی تو تھا نا کہ زندگی میں کبھی سید جعفر نے مجلس نہیں پڑھی، لیکن بس دل میں خیال پیدا ہوا، چنانچہ گئے، کتاب لے کر آئے، صرف بیوی اور بچوں کو بٹھا کے اس کتاب سے چند پیراگراف پڑھ دیے، وہی اتنی بڑی فضیلت بن گئی کہ آقا حسین نے آقا عباس سے کہا کہ اس کا نام لکھ لو ان لوگوں کی فہرست میں جو میرا بیان ذکر کرتے ہیں، تو یہ مجلس، یہ والی مجلس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ متوکل کے زمانے میں ہوتی تھی، دو دو تین تین عورتیں جاتی تھی جنگل میں جا کے مصائب پڑھتی تھی، مجلس ہو گئی، تو ان کو ملائیے نہیں، اور یہیں پر اسی حوالے سے اب بات آگے بڑھ رہی ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت کریم وہ مجمع کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خرچہ کرنے والے نے کتنا خرچہ کیا ہے، کہ معلوم ہوا کہ سارے ملینر اور بلینر جو ہیں پیسے والے سیٹ، جنہوں نے حرام طریقے سے مثلاً پیسے نہیں چلے، جائز طریقے سے کہ لیکن وہ اپنے پیسے کی بنا پر اہل بیت کو بلا لیں گے، اور ایک غریب آدمی اپنی غربت کی بنا پر شہزادی کونین کی حاضری سے محروم رہے گا، اہل بیت کو سمجھیں، وہ نیت کو دیکھتے ہیں، وہ جذبے کو دیکھتے ہیں، چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، اور اب تو بہت ساری خواتین نے بھی یہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ واقعہ مردانی مجلس میں ٹھیک نہیں لگتا، زنانی مجلس میں ٹھیک لگتا ہے، تو خیر میلبرن میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری کراچی میں ایک طویل عرصے تک شہرت یہ رہی تھی، تو عورتوں اور بچوں کے ذاکر ہیں، واقعہ کیا، اب یہ تاریخ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جس کو یاد رکھنا چاہیے، جس کو کتاب کی یا انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ رکھنا چاہیے، لوگ بعد میں بھول بھال جاتے ہیں، ہندوستان کا وہ زمانہ ہے کہ برٹش راج انڈیا میں قائم ہونے جا رہا اور ان کی ساری وہ سازشیں چل رہی ہیں، اس علاقے پہ قبضہ، اس علاقے پہ قبضہ، اس علاقے پہ قبضہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اودھ میں انٹر ہوئے، جو کیپٹل لکھنؤ تھا، آزاداری کا بھی مرکز، علم کا بھی مرکز، علماء کا بھی مرکز، دو ہی بڑے شہر تو تھے جو مرکز تھے، علم علماء اور آزاداری کا، ایک لکھنؤ، ایک امروہا، تو اب یہ اودھ میں داخل ہوئے لکھنؤ میں، اور آہستہ آہستہ کر کے حکومت پہ قبضہ کرنا ہے، اب اس کے وہ جو طریقے تھے یہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں، مختصر یہ کہ اودھ کے وزیر پر انہوں نے چارجز لگائے کرپشن کے، ये करप इसको हटाओ, माजून करो। यही कुछ उन्होंने दिल्ली में मुगल बादशाहों के साथ किया, यही उन्होंने अवध के अंदर वहां के हुक्मरानों के साथ किया, चार्जेस लगाए और उठा के उनमें से एक वजीर को जेल में डाल दिया। अब लखनऊ है और वो जमाने का लखनऊ, इनकी आदत थी, आदत क्या थी, इनकी इबादत थी कि ये हर साल चांद रात को एक सबील लगाते थे लखनऊ में प्यासों के नाम पर। ये सिर्फ चांद रात की सबील होती, जैसे कराची में जो रिजविया सोसाइटी वाले, उनको याद होगा मरहूम हबीब साहब का, के घर से जुलूस निकलता था चांद रात को। फिर चांद मुहर्रम का निकला है वो जुलूस, तारीखी हैसियत रखता था। तो लखनऊ के साहब सबील, चांद रात को सबील है प्यासों के नाम पर, और बेहतरीन उसमें दूध का शरबत बनाते हैं, खास तरीके से, खास रेसिपी से, खास अंदाज से उसको पकाते हैं, काढ़ते हैं, जो कुछ है। मैं वक्त आपका जाय कर रहा हूं। और इतना कि लोगों को पूरा साल याद रहता था, बल्कि लोग इंतजार करते थे कि चांद रात हो तो इनके घर जाएंगे, सबील पे जाकर ये शरबत पिएंगे। और वजीर थे तो कोई पाबंदी तो थी नहीं कि एक गिलास पियो कि दो गिलास पियो, जितना दिल चाहे पियो। लेकिन अब अगर चले गए जेल में और तकरीबन पूरा साल जेल में रहे, चुनाचे सारे पैसे घर में खत्म हो गए, घर वाले बर्तन बेच बेच के गुजारा कर रहे। ये चांद रात थी, उससे पहले एक दिन पहले इनको रिहाई मिली। अब जो आए घर में तो घर की हालत भी देखी, और चांद रात आज 29 की डेट थी, आज रात को चांद हो सकता है, हो गया चांद। अब चांद हो गया तो उनके जहन में यही ख्याल, या बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं, घर के बर्तन बेचे गए हैं, घर वालों के कपड़े बेचे गए और गुजारा किया गया, और मैं हर साल मौला के नाम पे सबील लगाता हूं, अरे सबील तो मुझे इस साल भी लगाना। लेकिन अब ऐसे हालात तो है नहीं कि वो दूध का शरबत बने और उसमें वो पिस्ते और बादाम और वो सारी चीजें डाली जाए और उसको फिर 12 घंटे पकाया जाए। तब जो इस वक्त मेरी हैसियत यही है कि पानी, उसमें थोड़ी सी शीरनी मिला के गुड़ का शरबत पसंद कहिए बना लिए। अच्छा, अब लखनऊ वालों को याद है कि चांद रात अगर हो गई, यानी आज चांद निकल आया तो वहां जाना, निकल आया चांद, अब पहुंचे लोग कसीर तादाद में, साल भर इंतजार होता। जो लोग अपने अपने शहरों से वाकिफ है, वहां कुछ ऐसे घराने होते हैं जिनकी नियाज बहुत मशहूर होती है, लोग आते साल भर इंतजार करते। तो पहुंचे यहाँ पे, शरबत रखा, एक बार उठाया, घूंट लिया, तो आम पानी है और उसमें भी जरा गुड़ मिला हुआ। अब कहा वो दूध के शरबत के चक्कर में आए, सब ना सही तो कुछ लोग, बड़ी तादाद, लेकिन लखनऊ के जो नफासत पसंद नाजुक मिजाज लोग हैं, एक एक घूंट लेके सबने इसी तरह वापिस कूदे रख दिया और चले गए। ये हर थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं। मैं बतौर मिसाल कह रहा हूं कि मसलन 5 टंकियां बनाई थी शरबत की, थोड़ी देर के बाद आके देखते पहली टंकी तो अभी खाली तो छोड़े, आधी तो छोड़े, 1/4 भी इस्तेमाल नहीं हुई है, उसी तरह से भरी हुई, पी ही नहीं रहा शरबत। यहां तक कि आधी रात का वक्त आ गया, पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आधी रात का मतलब खत्म सारी एक्टिविटीज, घर में आके रोने लगे, लगता है कि मौला ने मेरी नियाज कबूल नहीं की। अब ये रो रहे हैं आधी रात को बैठे हुए कि दरवाजे पे नौकिंग हुई, घबरा के इन्होंने पूछा इस वक्त कौन आ गए, हालात भी खराब है, अभी जेल से निकले। आवाज आई कि मुसाफिर यहां से गुजर रहे हैं, बहुत प्यासे हैं, क्या पानी मिल जाएगा। मरतबा तड़प के अपनी जगह से खड़े हुए, पानी है तो टंकियां भरी हुई हैं, जल्दी से दरवाजा खोला। और इस वक्त इतनी खुशी थी कि कुछ गौर भी ना किया, देखा कि हाँ कोई 60-70 आदमी हैं और मुसाफिर ही लग रहे हैं वो, और वो प्यासे खड़े हैं। कहा ये सारा, अब वो इतने प्यासे थे कि जो पूरे शहर के लिए शरबत बनाया गया, ये 50-60 आदमियों ने सारा शरबत जो है वो पी लिया, शरबत खत्म हो गया। अब इनकी जान में जान आई, अब सुकून हुआ, मौला के नाम पे नियाज बनाई थी और सारी नियाज इस्तेमाल हो गई। अब जरा सुकून हुआ तो देखा ये हैं कौन लोग, कहां के मुसाफिर, पता चला कि लिबास से भी और अंदाज से भी और चेहरे से भी ये हिंदुस्तान के तो नहीं लग रहे। ठीक है, हिंदुस्तान में बहुत सारे मुख्तलिफ कौम है, लेकिन कुछ तो कॉमन फीचर है ना, ये रखते कहीं बाहर के। घबरा के पूछा तुम लोग कौन, कहां से आ रहे, इस शहर में कैसे आए। जिसने पहले वक्त से बात शुरू की थी उसी ने कहा कि भाई हम ऐसे मुसाफिर कि हमारे हमें हमारे आका ने भेजा था इस घर के लिए, कौन है तुम्हारा आका? कहा कि मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। ये सारे शोहदाए करबला अभी अभी आका हुसैन ने बोला कि मुझसे कहा था, भाई हबीब मेरा चाहने वाला मेरे नाम पे एक सबील बना के बैठा है और कोई आके उसके यहाँ न्याज नहीं चख रहा और शरबत नहीं पी रहा, हबीब मैंने उसे कबूल किया है, तुम जाओ और इन तमाम शोहदाए करबला को लेके जाओ और जाके उसकी न्याज इस्तेमाल करके आओ, हमें आका हुसैन ने भिजवाया। वाह, ये नहीं देखा जाता है कि अच्छी बिरयानी है कि अच्छा खिचड़ा है कि अच्छा, हाँ अल्लाह ने हैसियत दी अपनी हैसियत के मुताबिक करे कि अच्छा दूध का शरबत है कि पानी है, सिर्फ देखा जाता है नीयत क्या है, खुलूस क्या है। 50,000 का मजमा कभी हो सकता है कि उनकी इबादत कबूल ना, और दो मोमिन घर में अकेले बैठे हुए एक दूसरे को खाली या हुसैन कहकर आंसू बहा रहे या रोने वाली जैसी शक्ल बना रहे, फातिमा जहरा की निगाह में ये मजलिस ज्यादा कबूल हो और ज्यादा कामयाब। तो जहन से निकाल फेंकिए ये चीज कि अगर मराजे ने फतवा दिया है तो इसका मतलब यह है कि हम घर में अकेले बैठकर, मैंने शुरू में एक जुमला कहा ना कि बीवी बच्चे उनको भी निकाल दे, वो भी नहीं, आप अकेले हैं बिल्कुल, तब भी आप घर में बैठ के एक बार या हुसैन कह लें, आपकी यही मजलिस कबूल। ना फतवा आपको रोक रहा है, ना अहले बैत इस मजलिस की अहमियत को कुछ कम समझ रहे हैं। और यहां पे एक बात, अब ये बात आगे बढ़ रही है, ये कल वाली बात से इसको मिला लीजिए, वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, वो अपनी मुसीबतों और परेशानियों में नहीं, वो अपने जवान बेटे के लाशे पर बैठकर भी, वो अपने शशमाहे का लाशा उठाकर भी पहले हमारी हाजत पूरी करते हैं, उसके बाद हमसे कोई और बात करते हैं। और इसी मौके पर यह बात इसलिए कहना जरूरी है, अब जो बात मैं कह रहा हूं ये आगे की एक मजलिस में तो बहुत अहम मौजू बनेगा, लेकिन फिलहाल भी जब बात यहां तक आई, कम लोगों को एक बात मालूम है और वो यह है कि हाकिम शाम मुआविया ने अपने बेटे यजीद का रिश्ता जनाबे जैनब की बेटी के लिए भिजवाया था। अच्छा, अब यह तयशुदा बात है कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, वाकया तवज्जो से सुने, इसलिए कि YouTube, Facebook, सब्सक्राइबर, व्यूज, लाइक, इस माहौल के अंदर यह चीज हमेशा जहन में रखिएगा। गर्चे जो पैगाम इसमें है वो हर मोमिन को पता, लेकिन आजकल ये जो सोशल मीडिया की एक मुसीबत हमारी कौम को, सबको लग गई है, लेकिन हमारी कौम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है मजलिसों के हवाले से, इसलिए कह रहा हूं। तो रिमाइंडर के तौर पर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जनाब ज़ैनब कुबरा के शौहर है, उनकी बेटी का नाम था कुलसूम, और मोहम्मद उनके बेटे हैं वो हर एक को पता। अब यहां थोड़ा सा तारीखी इख्तिलाफ है कि बाद उलमा कहते हैं कि ये जो इनकी बेटी कुलसूम थी ये दूसरी बीवी से थी, और बाद कहते हैं जनाब ज़ैनब कुबरा ही के बतन से ये बच्ची भी थी। तो इसी रिवायत को जहन में रख के बात सुनिए। मुआविया हाकिम शाम गवर्नर मदीना मरवान को खत लिखता, ये करबला के वाकये से पहले की बात और शायद कई साल पहले, और कहा कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बेटी का रिश्ता मुझे चाहिए अपने बेटे यजीद के लिए, और खत में कुछ तफसील लिखी, तुम जाओ जाके ये रिश्ता दो। और उसने उस खत के अंदर इस रिश्ते के हवाले से कुछ फायदे बताए कि भाई लड़की वाले क्यों कबूल करेंगे रिश्ता, उनको ये फायदे बताना। उसमें ये था कि यजीद हुक्मरान का बेटा, चुनाचे आला तरीन और महंगा तरीन महर मैं उसको दूंगा। आज भी अरब दुनिया में लड़की का महर बहुत अहम चीज, यानी किसी भी लड़की की इज्जत का दारोमदार इस बात पे आज भी कि उसको कितना महर मिल रहा है। इसकी वजह से अरब दुनिया का सबसे बड़ा मसला है जिसके अंदर शिया और गैर शिया सारी कौमें बराबर, लड़कियों को का महर अगर कम हो जाए तो क्या समझा जाता है, इस लड़की में कोई ऐब है, कोई खराबी, कोई नक्स है, कोई इसने गुनाह किया, तभी तो इसने इसका इतना कम महर, जितना बड़ा महर उस महर की वजह से बैठी है लड़की। हमारे यहाँ जहेज की वजह से बैठी होती है, वहां महर की वजह से बैठी होती है। सोशल प्रॉब्लम है, इन मजालिस में से एक मजलिस सोशल प्रॉब्लम पर भी होगी, लेकिन फिलहाल ये पहले जुमले की वजाहत, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के आदमी इसको नहीं समझ पाते अगर मैं इतना ना कहता। महंगा तरीन महर, हुक्मरान का बेटा है भाई, ये महर मिलेगा, कैसा महर, कम से कम मदीने की किसी औरत को आज तक न मिला होगा नंबर एक। नंबर दो, इस रिश्ते का एक फायदा यह होगा कि आजकल अब्दुल्ला जरा से फाइनेंशियल क्राइसिस में है और उनपे कुछ कर्जे जड़ गए, तो अगर ये शादी हो जाएगी तो उनके सारे कर्जे मैं अदा करूंगा। वो मौला थे कि अगर सगे भाई अकील ने जरा सा अपने हक से ज्यादा मांग लिया तो आग या कोयला हाथ पे रख के उनको जला दिया। ये हाकिम शाम जो माल मुस्लिमीन को शीर मादर की तरह हजम कर जाता है। लेकिन खैर, तीसरी बात, और अगर ये रिश्ता हो गया और ये दोनों खानदान एक रिश्ते में जुड़ गए, बनी हाशिम जिससे इस बच्चे का ताल्लुक है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बेटी, और बनी उमैया, तो अगर ये रिश्ता हो गया, खानदान जुड़ गए, तो हमारे तुम्हारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये इंडिया की तारीख पढ़ लीजिए, वहां अक्सर यह हुआ कि बादशाहों की बेटियां दे दी गई हैं, बादशाहों की बेटियां ले ली गई हैं, हरीम बादशाहों के झगड़े खत्म हो जाते हैं। नंबर चार, और दुनिया तुम्हारे खानदान पे रश करेगी, दुनिया वो रश करेगी कि यजीद तुम्हारा दामाद बना है, वली है, तुम्हें पता है कि मेजोरिटी इस वक्त मुसलमानों की यजीद को पसंद करती या यजीद की तारीफ करती है। तो अब ये जो है, जब ये शादी होगी तो तुम्हारी बच्चे की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो काबिल एहतराम समझेगी, इसलिए कि यजीद की बेटी बीवी। ये चार पांच चीजें लिख के उसने खत भिजवाया मरवान। अभी करबला के वाकये कई साल बाकी, अभी मुआविया मरा नहीं है, जिंदा। और एक मरतबा मरवान को यह खत मिला, मरवान अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के घर पहुंचा। गवर्नर मदीना है, लेकिन चूंकि इस वक्त मसला रिश्ते का है, खुद घर पहुंचा और कहा कि मैं हाकिम की तरफ से पैगाम लाया हूं वली अहद के लिए, यानी जो बाद में हुक्मरान बनने वाला, इस्लामी दुनिया उसके हाथ में आने वाली, उसका रिश्ता लेके आया, उससे बेहतर रिश्ता क्या होगा। आठ मुहर्रम की मजलिस में अक्सर एक रिवायत में पढ़ता हूं कि जब मौला अली का रिश्ता उम्मुल बनीन के कबीले में गया तो उस कबीले के लिए ईद हो गई थी, ईद का लफ्ज भी छोटा, तो अब कहा कि मैं रिश्ता लाया हूं तुम्हारे लिए, बहुत बरकत वाला रिश्ता, बहुत खुशकिस्मत हो कि इतना बेहतरीन रिश्ता मिला। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने एक जवाब दिया जो वैसे भी शरण भी एक मसला है, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम मन कुंतु मौला फहाज अली मौला, और खानदान अहले बैत का तरीका भी। कहा कि हमारे तमाम मामलात हमारा मौला हुसैन तय करता है, हत्ता ये कि हमारे खानदान की सारी शादियों का फैसला भी आका हुसैन करते हैं, चुनाचे ये मामला मेरे इख्तियार में है ही नहीं, जो कहना सुनना है जाके आका हुसैन से बात करो। ज़हन में रखिएगा कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उम्र में आका हुसैन से बहुत बड़े, लेकिन वो एक तरीका मोमिन का भी होना चाहिए और खानदान अहले बैत का भी था। तो अब मरवान आका हुसैन के पास गए और कहा कि अगर कि हाकिम मदीना ने तो मुझसे कहा था कि मैं अब्दुल्ला से बात करूं, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ भेज दिया, इस बच्ची का रिश्ता चाहिए, जनाबे ज़ैनब की बेटी का रिश्ता मांगा जा रहा। और वो चारों चीजें उसने बता दी। आका हुसैन ने सुना और सुनने के बाद कहा कि नंबर एक, मेहर बड़े से बड़ा मेहर देने को तैयार, क्या तुम्हें नहीं पता जो मेहर हमारे नाना रसूल खुदा ने अपनी बेटी की शादी में दिया हमारे लिए वही सबसे बड़ा मेहर है, हमारे यहां किसी बच्ची का निकाह उससे ज्यादा मेहर पे नहीं हुआ, हमें वही चाहिए 480 दिरहम या बास किताबों में 500 दिरहम, बस अरब के एतबार से बहुत छोटी रकम है। कहा कि नहीं, इससे बड़ा कोई मेहर नहीं है जो फातिमा जहरा के लिए हमारे नाना ने तय किया है, तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये बड़ा मेहर। नंबर दो, तुमने कहा कि सारे कर्जे अदा हो जाएंगे, हमारी बेटियां अपने बापों के कर्जे शौहर के माल से अदा नहीं करवाया करती हैं, तो नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ये मदद। बहुत मैं मुख्तसर कर रहा हूं कि वाकया जरा लंबा ना हो जाए। नंबर तीन, तुमने कहा कि अगर ये शादी हो जाए तो दोनों खानदानों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये झगड़े किसी दुनियावी मसले पे नहीं है, ये झगड़े हक और बातिल के मसले पर है, ये झगड़े दीन के मसले पर है, जब तक कि हक यहां है बातिल वहां, झगड़ा कैसे खत्म होगा। हाँ, अगर जमीन पे झगड़ा होता, अगर किसी औरत के मसले पे झगड़ा होता, अगर किसी दौलत के मसले पे वो मुहावरे को मैंने बता दिया जन सर जमीन इनकी वजह से झगड़ा होता तो ठीक है कि भाई दोनों खानदान करीब आ गए, जब मसला हक और बातिल का है, जब मसला दीन और बेदीनी का है, वो झगड़ा कयामत तक खत्म नहीं हो सकता है, चुनाचे इस रिश्ते से ये मसला भी हल नहीं होगा। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, कभी आप तफसील के साथ किसी आलिम से ये रिवायत सुनिए जो बिहार उल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने नकल की तो शायद ज्यादा मजा आए। और चौथी चीज, और ये जो मैंने कहा ना कि असल तो ये चीज थी कि यकीनन अगर हमारे खानदान की बच्ची यजीद के यहाँ चली गई तो आम लोग जो हैं, जो आम पब्लिक होती वो रश करेगी कि भाई कितने बड़े घराने में शादी हुई, यजीद के बहुत चाहने वाले और मानने वाले। मैं मैदान करबला में देख लेना, इधर 72 थे तो उधर 30,000 से लेके 5 लाख या 3 लाख तक का आदत बताया जाता। मगर ये जुमला, हक और बातिल का फैसला तादाद की कसरत में कब से होने लगा है? बातिल वाले हमेशा ज्यादा रहेंगे, हक वाले हमेशा कम रहेंगे। तो अगर ज्यादा लोग तारीफ करने लगे तो वो ज्यादा लोग हमें नहीं चाहिए, हमें हक वाले चाहिए जो हमेशा तादाद में कम रहेंगे। ये आखिरी चीज हर मोमिन जानता कि हक वाले हमेशा तादाद में कम है जब तक के जहूर इमाम नहीं हो जाता है, जो मेरा मौजू है इस अशरे का। मगर हर जगह ये बात कहने के बावजूद मजलिस वही कामयाब है जिसमें पब्लिक ज्यादा है, जिनकी आप पब्लिक कम आई है मजलिस नहीं कबूल नहीं हुई वो मजलिस। खतीब वही बहुत बड़ा है जिसको मसलन 1 मिलियन लोग लाइक करें, 1 लाख आदमियों ने जिसको सब्सक्राइब किया हो, जिसके व्यूज देख लिया, 80,000 व्यू है 3 घंटे के अंदर, वो कोई खतीब है? 2 दिन से उसकी मजलिस लगी है, 15 से 20 उसके व्यूज नहीं होने पा रहे। ये क्राइटेरिया, ये उसूल, ये कहां से आ गया शियत के अंदर और कहां से आ गया हुसैनियत के अंदर? बिल्कुल वाजह तौर पर कई दफा कहा, लेकिन चूंकि इसमें वाकया भी जरा दिलचस्प था तो मैंने कहा इस वाकये के जरिए बता दूं ये ज्यादा ये कम। इमाम बारगाहों का फैसला लोग इस बात पे करते हैं, भाई वो इमाम बारगाह जो है ना वो बहुत बड़ा है क्योंकि वहां पब्लिक बहुत आती है, और फुला जगह कितने 10 आदमी आते हैं, ये नाकाम इमाम बाड़ा। यजीदियत के क्राइटेरिया से चेक कर रहे हो, मुआविया के उसूलों से चेक कर रहा तो तुम ठीक हो, और अगर हुसैनी उसूलों से चेक कर रहे हो तो वहां मसला ये तादाद का नहीं है। हाँ एक ठीक बात हो और तादाद भी हो तो क्या कहना, लेकिन सिर्फ तादाद को मैयार बनाना आज का सोशल मीडिया मजबूर कर रहा है बानियान मजलिस को, मजलिस पढ़ने वालों को और मजलिस सुनने वालों को कि वो सिर्फ ये व्यूज के चक्कर में और सब्सक्राइबर के चक्कर में वो हर वो बात कहें जो आम लोगों के दिल को खुश करती है, चाहे वो अहले बैत की तालीमात के भी खिलाफ और करबला के जिहाद के भी खिलाफ। कोई ऐसी बात ना कह दो कि लोग नाराज हो जाए, वरना वो सब्सक्राइबर खत्म हो जाएंगे, लाइक के बदले डिसलाइक का बटन दब जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फितना है। वरना मजहबी मामलात में ये उसूल नहीं थे कभी, दुनियावी मामलात में हो, कोई सिंगर ऐसा है, कोई एक्टर ऐसा है, कोई खाना पकाने वाली खातून ऐसी है वो कहती है कि मैं महीने में 2 करोड़ कमाती हूँ, कमाए वो, मगर दीन में ये उसूल नहीं चलता। और इसकी वजह से कितनी खराबियां आ रही हैं, एक वाकया और सुन लीजिए, ताकि इस वाकये के जरिए से आपको विलायत अली, जो मेरे मौजू का दूसरा हिस्सा है ना, इमाम जमाना और विलायत अली, समझ में भी आए कि अली है क्या। अली को समझिए, अली का मिजाज समझिए, हमने अली का नाम तो लिया अभी तक अली को समझा ही नहीं है। मारिफत की बात नहीं कर रहा, वो तो सिवाय अल्लाह और रसूल के अली की सही मारिफत कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना एक मोमिन के लिए अली को समझना जरूरी। मिर्जा हुसैन नूरी हमारी तारीख के एक बहुत मशहूर मुहद्दिस है, और यहां पर एक जुमला मैं इसलिए कह दूं कि जब इस किस्म की कोई बात आती है ना जिसमें मोमिन को यह पैगाम मिलता है कि जी तुम्हारे लिए ये जन्नत के जो तुम्हें इस तरह बाग दिखाए जा रहे हैं वो इस तरह यकीनी नहीं है, जब कोई ऐसी बात बताई जाती है ना तो अखबारी उलमा फौरन कह देते हैं कि सब गलत। मिर्जा हुसैन नूरी अखबारी आलिम थे, लेकिन जो सही अखबारी आलिम है, सही जो खाली अपने गलत नजरियात को छुपाने के लिए अखबारियों का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही अखबारी आलिम उनका एहतराम है, غلطیاں ہیں ان کی، غلطیاں الگ چیزیں، احترام اپنی جگہ. مرزا حسین نوری علم حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی یا مجلسی ثانی، اور ایک ایسا طریقہ انہوں نے شیعیت کے اندر رائج کیا کہ آج بھی، بلکہ یہ کہیے کہ آج کل زیادہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. پیغمبر کی ایک حدیث ہے، من سن سنتا حسنت حسن، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ لے کر آئے گا، جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے سب کا ثواب اس آدمی کو ملے گا. اور وہ من سن سنتا سعیتا فعلیہ وزرا، اور اگر کوئی اسلام میں برا طریقہ لے کر آئے گا تو جتنے لوگ اس برے طریقے پہ عمل کریں گے سب کا عذاب اس پہلے آدمی کو مل کے ملے گا. مثلا مومنوں کے معاشرے میں جس پہلی عورت نے بے پردگی اختیار کی، اب اس کے بعد جتنی بے پردہ عورتیں، ہر بے پردہ عورت کو اپنی بے پردگی کا گناہ ملے گا، مگر یہ ساری بے پردگی کا گناہ مل کر 500, 1000, 2000 گناہ مل کر اس پہلی عورت کو ملے گا جس نے اپنے سر سے چادر یا اسکارف اتار کے پھینکا. اور اسی طرح اگر کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے، اب یہ یوٹیوب، فیس بک اور یہ ویورز اور یہ سبسکرائبر، یہ والی خرابی جو اسلام میں لے کے آ رہا ہے، وہ کیا اس کا حشر ہوگا، یہ بات کی مجلسوں میں بھی کچھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال اپنے اصل موضوع پہ رہتا ہوں. بہت پہلے، یعنی بہت پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ خود معصومین کے زمانے میں بھی اور غیبت صغرا کے زمانے میں بھی، جب امام کی غیبت شروع ہوئی، شیعہ حضرات کربلا معلیٰ کی پیدل زیارت کو جاتے تھے، اور حدیثیں بھی ہیں، اس کا ثواب بھی ہے. کامل الزیارات جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے زیارات کے ٹاپک پر، اس میں ساری حدیثیں موجود ہیں. پھر یہ سلسلہ ختم ہو گئے، پھر یہ رواج اٹھ گیا شیعہ معاشرے سے، زیارت ہمیشہ رہی لیکن لوگ زیارت پہ اسی طرح سواریوں پہ جاتے رہے. ہندوستان سے لوگ پانی کے جہاز سے بصرہ اترتے تھے، ٹرین سے بغداد جاتے تھے، وہاں سے بسوں پر، کاروں پر یا اونٹوں اور گھوڑوں پر زیارت کرتے تھے. پیدل کا رواج ختم. دوبارہ کس نے اس کو ریوائز کیا، کس نے دوبارہ یہ رواج اسلام میں شروع کیا؟ مرزا حسین نوری نے. آج اگر 2 کروڑ آدمی یعنی 20 ملین زائرین کربلا پیدل آتے ہیں، ان سب کی زیارت کا ثواب مل کر مرزا حسین نوری کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور بہت عظیم عالم ہے، میں ان کے حالات بیان کرنے لگوں تو کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا، لیکن اس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس سال کی مجالس میں آپ کو الگ الگ کئی علماء کے حالات بھی سننے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ہمارے وہ محسن ہیں کہ ہمیں ان کا نام وقتاً فوقتاً لینا ہے. مرزا حسین نوری، ان کی ایک کتاب ہے دار السلام فیما یتعلق بالرؤیا والمنام، ایک کتاب ہے دار السلام، شارٹ کر کے دار السلام، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور واقعہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور ذاکر کا لکھتے ہیں. ذاکر یعنی جو کراچی کی زبان میں، پنجاب کی زبان میں نہیں، خطیب، مجلس پڑھنے والا، اس کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. اور کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کو دوہرا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسے خواب پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی جو دین کی اسٹیبلش چیزوں سے ہٹ کے کوئی پیغام دے، لیکن جو چیزیں اسلام میں پہلے سے ثابت ہیں اس کے لیے اگر کوئی خواب ہو، اور خواب دیکھنے والا آغا سیستانی کے لیول کا ہو، یا آغا خوئی کے لیول کا ہو، یا آغا عبدالحادی شیرازی کے لیول کا ہو، یا مرزا حسین نوری کے لیول کا ہو، تو اس کی پوری پوری حیثیت ہے، اہمیت ہے، اور وہ اتھینٹک ہے. وہ خطیب اپنا ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے مانے ہوئے خطیب. میں یہاں بطور مثال انڈیا پاکستان کے کسی خطیب کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ توہین بن جائے. وہ فرماتے ہیں آغا خود مرزا حسین نوری سے، اور چونکہ اس خواب میں معصومین کی زیارت ہوئی ہے، اور جس خواب میں معصوم کی زیارت ہو کنفرم ہو جائے کہ معصوم کی زیارت ہوئی ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے. جیسے کل رات والے واقعے میں بھی خواب دیکھنے والا اتنا عظیم مرجع تھا، تو اس نے پہچان لیا कि आका हुसैन आए हैं और आका अब्बास आए, हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे। खैर, तो खुलासा यह है कि वो कहते हैं कि एकदम मैं सो रहा हूं, एकदम मुझे लगा कि कयामत हो गई, मैदान कयामत हो गई, लोग कब्रों से निकाले जा रहे हैं। और फिर वो कयामत की जरा मंजरकशी की जिसके बयान करने का वक्त नहीं, वो सूरज सवा नजे में चमक रहा है, खौफ दहशत का माहौल है, हर आदमी परेशान है, वो सारी बातें अपनी जगह। हर आदमी कब्र से निकलता है, जैसे ही कोई कब्र से निकलता है दो फरिश्ते उसको पकड़ लेते हैं, एक उसके आगे चलता है एक उसके पीछे चलता है, और ये कह के उसको ले चलते हैं कि हिसाब किताब का वक्त हो रहा, इस वक्त हिसाब हो रहा जिंदगी भर के अमाल का, चलो वहां पे। ये खतीब बहुत बड़े खतीब, क्या मैं नाम लूं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए भी तौहीन ना हो जाए, ये बहुत बड़े खतीब ये कहते हैं कि मैं भी अपनी कब्र से निकले, तो ऐसे ही कयामत का मंजर देख के दिल में डर पैदा हो गया, और फिर साथ में आगे दो फरिश्ते पकड़ के, एक आगे है एक पीछे है, आगे वाला घसीट के ले जा रहा, क्योंकि जिस तरह से कभी कभार जानवर को आप जबह करें तो वो तैयार नहीं होता है तो कसाई कान पकड़ के खींचता है, दूसरा पीछे से धक्का देता है, उस तरह से हिसाब किताब का मरहला है, डर महसूस हो रहा था वैसे ही कयामत देख, और अब ये कि सारे जिंदगी के अमाल का नामा खुलेगा, कोई खुशी से जाने को तैयार नहीं है, फरिश्ते घसीट के ले जा रहे, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं चारों तरफ किताब दारुस्सलाम, और एहतियातन में अभी अभी आने से 15 मिनट पहले पूरा वाकया दोबारा किताब में देख के आया, पूरा वाकया दोबारा, या आने से 15 मिनट पहले यानी 7:15 पर यह वाकया मैंने अभी अभी देखा दोबारा, ताकि रिफ्रेश हो जाए। कहा कि अब इतना डर इतना खौफ, दिल नहीं जा रहा हिसाब किताब के लिए। जिस बच्चे की इम्तिहान की तैयारी पूरी ना होना, जब एग्जाम का दिन करीब आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता, दिल ही नहीं जाता इम्तिहान देने का, लेकिन फरिश्ते दो हैं पकड़ के ले जा रहे, हर एक के लिए दो दो लगे। अब मैं घबराहट के आलम में बढ़ रहा हूं कि अचानक मैंने देखा मेरे राइट साइड पर, देखिये ये है पूरा मिजाज अहले बैत का, हमने कुछ और ही समझा, शराबे पियो और अली का नाम लोगे तो जन्नत है, और बेपर्दा घूमो और फातिमा का नाम लोगे तो जन्नत है, हमने अहले बैत को समझा ही नहीं। बहुत ही मुख्तसर पहले एक जुमला कह दूं जिसकी तशरीह बाद में होगी, अहले बैत हमारे वफादार है या अहले बैत पहले अल्लाह के वफादार है। अच्छा, अब मैंने देखा मेरे राइट साइड पर एक अमारी जा रही है बहुत बड़ी, और वो अमारी शहजादी कौनैन की अमारी, मैं बातें मुख्तसर कर रहा हूं, ये सारी चीजें हैं कि कोई ऐलान हो रहा था या बोर्ड लगा था या हूरे कह रही, जो कुछ एक बहुत बड़ी हमारी, वो शहजादी कौनैन की है, सारे पर्दे पड़े हैं, और उस अमारी के नीचे एक बड़ा मजमा जमा है, और ये सब वो लोग जो हिसाब किताब से भागना चाह रहे थे तो यहां आ गए पनाह की तलाश में, और जब यहां आ गए तो उनको पनाह मिल गई। जब मंजर मैंने देखा तो मैं भी, फरिश्ते मेरे साथ है ना, एकदम से मैं हाथ छुड़ा के भागा, सीधा भागता हुआ अमारी के नीचे खड़ा हो, बस अब फरिश्ते मजबूर, दूर से खड़े इशारा कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, लेकिन वो कसाई की छुरी तले खुशी से कौन जाएगा, यहां तो मुझे सिक्योरिटी मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गया, शहजादी कौन है कि सवारी है उसके नीचे नीचे, आपने देखा होगा ना, जब हमारे यहां ताबूत निकलता है तो बहुत से लोग ताबूत के नीचे जाते हैं, ये तहफुज है, प्रोटेक्शन है, ये सलामती है, शहजादी कौनैन की सवारी के नीचे मैं जा रहा हूं, अब यहां किसी फरिश्ते की हिम्मत और मजाल नहीं कि वहां के किसी गुनाहगार को पकड़ के बाहर निकाले, दूर से इशारा कर रहे हैं आओ आओ, लेकिन कौन आएगा, खुशी से कौन आएगा, और वो मजमा बढ़ता जा रहा कि अचानक मैंने देखा मैदान कयामत में एक कासिद आ रहा है, फरिश्ता, और आने के बाद पैगाम देता है शहजादी को उसी हमारी के अंदर, क्या शहजादी कौन है, आपके बाबा ने मुझे भिजवाया, मैं आपके बाबा के पास से आया और उन्होंने कहा है बेटी फातिमा ये सब अल्लाह के गुनाहगार हैं और तेरी वजह से इनका हिसाब किताब रुका हुआ है, तो इनको अपनी पनाह में से उस हिसाब किताब के लिए भेज दे। बस जैसे ही ये कहा वैसे ही हूरों ने इशारा किया उन फरिश्तों को, क्या हो अपने अपने गुनाहगार को ले जाओ, चुनाचे जो फरिश्ते मेरे थे ना दो वो भी तेजी से आगे बढ़े, मुझे पकड़ के ले गए, कहां लेके गए, जहां पे वो तराजू है जिसमें आमाल तोले जाते, मौला का एक जुमला है अनल मीजान, उतर अजू तो मैं। मौला का एक लकब है बंदों का हिसाब किताब लेने वाला, वो अली है। तो आप कह रहे लेके गए, हमने देखा आखिर ये आदमी कहता है, आदमी नहीं बहुत बड़ा खतीब। मैंने देखा कि मैं मैदान के तकरीबन आखिर में एक बहुत खूबसूरत सा नूर का बना हुआ मिंबर, मिंबर के ऊपर रसूल खुदा तशरीफ फरमा, और मिंबर की जो पहली सीढ़ी होती है वहां मौलाए कायनात खड़े। रसूल की जियारत हो रही है, अली की जियारत हो रही है। मिर्जा हुसैन नूरी जैसा अजीम अखबारी मुहद्दिस हो आलिम ये वाकया कोट कर रहा, और पूरा इसको ऑथेंटिक समझ के लिख रहे हैं। जब कभी आप मौला के रोजे की जियारत को जाएं, क्योंकि जरा पैनेडेमिक की वजह से ऑस्ट्रेलिया से ट्रेवल बैन है, तो किबले की तरफ से जब आप हरम में दाखिल होते हैं मौला के, तो जैसे ही मेन गेट से दाखिल होंगे खुला सहन आएगा, जैसे ही मेन गेट से अंदर दाखिल होंगे राइट साइड के ऊपर दूसरा या तीसरा हुजरा मिर्जा हुसैन नूरी की कब्र है और उनके शागिर्द अजीज शेख अब्बास कुम्मी की है। मैं इनकी अजमत बता रहा हूं कि जिसने वाकया लिखा, तो मौला खड़े मिंबर की पहली सीढ़ी के ऊपर, मुझे देखा कहा कहां चले गए थे, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं हिसाब किताब लेने वाला हूं। पैगंबर ने कहा था ना कि अय अली उम्मत मेरी होगी, हिसाब किताब तू लेगा। अनामा आमाल अभी नहीं खोला, कहा कि ये बता के तू मजलिस में पढ़ता था, तूने फुला मजलिस में इतनी गलत रिवायत कैसे पढ़ दी जिसमें मेरे बेटे हुसैन की तौहीन हो रही थी। हमारे यहां बाद रिवायतें लोग ऐसी पढ़ देते जिनको अंदाजा भी नहीं होता इसमें मासूम या मासूमा की तौहीन। ऐसे भी मैंने नोहे सुने कि हुसैन शिमर से गिड़गिड़ा के फरियाद कर रहे हैं कि खंजर न चला, या फातिमा कह रही है कि खंजर न चला, या इस तरह से फरियाद कर रहे हैं, जिल्लत है अहले बैत की। आगा हसन यजदी, ये भी एक बहुत बड़े आलिम है, मेरे पास इनका तारुफ कराने का मौका नहीं है। अगर कोई ये पूछे कि मौलाना हमें करबला की रिवायतें पढ़ना है जरा सी ऑथेंटिक, तो बहुत ऑथेंटिक किताबों में कौन कौन सी किताबें, तो एक नाम आएगा शेख मुफीद की किताबें इरशाद, एक नाम आएगा इब्ने ताऊस की लहूफ, और एक नाम आएगा आगा हसन यजदी की महीजुल अहजान, जो उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, इंटरनेट के ऊपर आपको पीडीएफ की फाइल इसकी मिल जाएगी। यानी करबला की ऑथेंटिक हिस्ट्री में से एक है महीजुल अहजान। और क्या ये मौलाई थे, आका हुसैन का नाम आता था रोते रोते खच खा के गिर पड़ते थे। एक दिन मजलिस में गए, मजलिस में बैठे बहुत ही सीनियर आलिम, इनकी किताब है ऑथेंटिक किताब है महीजुल अहजान, इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा अगर आपको वाकई इंटरेस्ट हो। ये रिवायतें तो बहुत पढ़ी जाती है, सिर्फ ऑथेंटिक रिवायतें। मजलिस में खतीब ने वो वाकया पढ़ा शामे गरीबा से कुछ पहले का, कि शहजादी फिजा ने वो शेर को बुलाया, वो शेर आ गया और उसने आके आका हुसैन के लाशे की हिफाजत की। रिवायत भी मशहूर है, जियारत भी मशहूर है। फिर उसने उसमें एक जुमला पढ़ा दिया और कहा कि ये शेर जो था असल में ये मौला अली थे जो अपने बेटे के लाशे की हिफाजत के लिए आए। और मैंने कराची में ये एक और रिवायत सुनी कि जब रसूल खुदा मेराज पर गए थे तो पर्दे के पीछे से एक शेर निकल के आया था, वो मौला अली थे। मजलिस खत्म हो गई, तो खतीब को मेंबर पर टोकना मुनासिब नहीं होता है। जैसे वो उतर के नीचे आए और इनसे हाथ मिलाया, क्योंकि तो बहुत से सीनियर आलिम है ना, जैसे अगर मेरी मजलिस में आगा सिस्तानी आके बैठे हो तो मेंबर से उतर के मैं तो उनके कदमों में गिर पड़ूंगा ना। उन्होंने कहा कि तौबा कर, तौबा कर, ये जो तूने इस वक्त रिवायत पढ़ दी है बिल्कुल रिवायत सही चल रही थी, आखिर में ये मौला अली, ये अली की तौहीन, क्योंकि कोई इमाम मासूम कभी जानवर की शक्ल में ना आया है ना सकता। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, जानवर पस्तर है इंसान के मुकाबले में, इमाम को जानवर बना रहे नऊज़ु बिल्लाह। कहा कि ये तौहीन है, तुमने तो मसाइब की शिद्दत और मौला की फजीलत बयान करने के लिए रिवायत पढ़ दी, लेकिन ये मौला की तौहीन। वही मजमे में उससे दुआए तौबा पढ़वाई, खाली ऐसा नहीं कि हाँ गलत है कि आइंदा एहतियात करूंगा, दुआए तौबा पढ़ो कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया। तो ऐसी कितनी रिवायतें हमारे यहां पढ़ दी जाती है। अब सुनी मौला अली ने कहा तूने ये रिवायत कहां से पढ़ दी। असल वाकया जो चल रहा है, टाइम बहुत हो गया, मैं फिर माजरत खाऊं उन लोगों से एक घंटे का टाइम निकालते हैं, मैं सवा घंटे की मजलिस पढ़ देता हूं, तो कयामत का दिन मिर्जा हुसैन नूरी, मशहूर मुहद्दिस और अखबारी आलिम, जिनका टाइटल है सेकंड मजलिसी, मजलिसी सानी, मौलाना ने कही रिवायत कहां से पढ़ी? पहले तो वो जो तरीका हमारा आपका होगा, इंशाल्लाह तो नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ मैं सट पटा गया। एक तो कयामत का माहौल ही बड़ा कयामत खेज है, कयामत का माहौल भी बड़ा कयामत है, और साथ में मौला का डांट के पूछना कहां से पढ़ी ये रिवायत। मैंने घबरा के कहा, नहीं नहीं मौला, मैंने कभी ये रिवायत नहीं पढ़ी। इस तरह से लोग सफेद झूठ बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। जैसे ही मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बाजू में वो एक मीख, एक कील, गाड़ी हो क्या कि नीलिंग जिसे कहते हैं नील, और वो जो मेरा बराबर में फरिश्ता खड़ा था उसने फौरन एक रजिस्टर मेरे हाथ में दिया। मैंने देखा ये तो मेरा नाम आया अमल जो अब दिया मेरे हाथ में, खोले उसने, मेरी जिंदगी भर की मजलिसों की तफसील उसमें लिखी है कि इतने बज के इतने मिनट पर फला तारीख अल असर में तुमने ये पढ़ा, और महफिल खुरासान में ये पढ़ा, और शोधाए करबला में ये पढ़ा, तो एक एक चीज उसमें लिखी है जो मैं खुद भूल चुका हूं। नामा अमाल में सब लिखा। वाला ने कहा, देख रहा है, पहले तो इंकार किया कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा, सब एक एक दिन की तफसील है कि ये रिवायत कहां कहां पढ़ी, जिसमें मौला हुसैन की तौहीन और कुछ है इसमें तफसीलात भी, लेकिन वो मैं नहीं बयान करना चाहता, क्योंकि तौहीन वाले जुमले कुछ ऐसे हैं जो दोहराए जा सकते हैं, कुछ इतने तौहीन वाले हैं कि नहीं दोहराए जा सकते, बस समझ जाइए। अब क्या करूं मैं, एकदम मैंने कहा दे दो हवाला, हमारे यहां ये मुझे पता, ये मेरी फील्ड की बात, कोई ऐसा खतीब जाकिर फंसता है ना, वो उलट पुलट किसी किताब का नाम ले लेता। मैंने कहा यह अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अनवार में रिवायत मौजूद है 10वीं जिल्द में, अभी 110 जिल्दे हैं इस किताब की वॉल्यूम, नाम ले लो। जैसे ही मैंने कहा, मौला ने फरिश्ते को बुलाया, कहा जाओ मजलिसी के पास, पहले तो मेरा सलाम उसको कहना और उसके बाद ये किताब उससे लेके आना। मैंने पलट के देखा, सामने उलमा की सफे बैठी हैं, पहले आलिम मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी से लेके मेरे जमाने तक के उलमा सब लाइन में बैठे। सबसे पहली लाइन में बिल्कुल बीच में अल्लामा मजलिसी बैठे, उनके सामने उनकी जिंदगी भर की किताबें रखी। मैं यही तो एक आलिम का कयामत का सबसे बेहतरीन गिफ्ट वही है जो उसने अहले बैत के दीन की खिदमत की। फरिश्ता गया अल्लामा मजलिसी से, कहा कि मौला अली बिहारुल अनवार की 10वीं जिल्द मंगवाई। उन्होंने किताबों में से निकाल के मुझे दी। वो फरिश्ता आया मेरे हाथ में पकड़ा है, मौला ने कहा आ गई किताब, तुमने इसमें से पढ़ा, बताओ कहां लिखा। मैंने तो ऐसे ही हवाला दे दिया ना, और मैं आपको बताऊं ये हमारी फील्ड में बहुत होता है। अब मैं क्या करूं, सरपट आ गया, हो रिवायत इस किताब में, तो मैं किताब खोल के मौला को दिखाऊं। नहीं नहीं मौला, वो मुल्ला सालेह बरगानी की किताब में, उन्होंने करबला पे तीन किताबें लिखी है, मुल्ला सालेह बरगानी फारसी की एक बहुत मशहूर शायरा है, कुरतुल ऐन ताहिरा, जो बाबी मजहब बहुत फैलाया उसने अपनी खूबसूरती की वजह से, उसका बाप बहुत काबिल एहतराम आलिम है, बाप ऐसा बेटी ऐसी, मुल्ला सालेह बरगानी, इनके बड़े भाई अपने जमाने के मर्जे थे जिनको सगी भतीजी ने शहीद करवाया, क्योंकि वो बाबी मजहब के खिलाफ फतवा दे चुके थे। सगी भतीजी ने अपने चचा को शहीद करवाया, और ईरान के लोग उनको शहीद सालिस कहते हैं, वो जो आगरा में है उनको नहीं। ये एक अलग मौजू है, मैं कुछ बात और भी कहता, टाइम नहीं। कहा मुल्ला सालेह बरगानी की किताब से मैंने पढ़ा, मौला ने फरिश्ते से कहा जाओ मुल्ला सालेह बैठे होंगे, उनकी किताब लेके आ जाओ। वो छठी या सातवीं लाइन में थे, अल्लामा मजलिसी तो फिर मजलिसी है ना, वो छठी लाइन में थे। फरिश्ता गया, किताब लेके आया, मौला ने मेरे हाथ में किताब दे दी, कहा निकालो इसमें कहां लिखेगी। अब एक मरतबा मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, क्या बोलूं, जिस किताब का नाम लू, जो रेफरेंस दू, फौरन वो किताब मंगवा ली जाती। कि इतने में एक फरिश्ता आता है रसूल खुदा के पास, ये है मौला अली का मिजाज, और आने के बाद कहा कि परवरदिगार ने आपको एक पैगाम दिया, जो हदीस किसा के जुमले हैं, कि अल्लाह ने एक पैगाम दिया कि अली से कहें इस तरह से हिसाब किताब न ले, अगर वो इतनी बारीक बीनी से हिसाब किताब लेंगे तो मेरा एक बंदा भी नहीं बख्शा जा सकता है, सब जहन्नम में जाएंगे।
अली से कहो कि नहीं थोड़ी नरमी करें, कुछ चीजें नजरअंदाज करें, और मेरी आंख खुल गई। तो अब इसके अंदर जो असल जिसके लिए मैं कह रहा था, कल का जो जुमला था आखिरी मजलिस के इख्तिताम वाला, आज बिल्कुल आखिर उसी से मिला। लिस्ट में नाम आ जाना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन उससे बड़ा अजाब यह है कि नाम आके काट दिया जाए। नाम क्यों कटता है? इन गलतियों से कटता। ये मजलिस पढ़ने वाले की फजीलत क्या? आका अब्बास उसका नाम लिखते हैं, और ये लापरवाही से मजलिस पढ़ने वालों के लिए वो पैगाम। और अली को समझे, अल्लाह अपने दीन के बारे में इतना सख्त नहीं है जितने अली अल्लाह के दीन के बारे में सख्त हैं। हमने तो समझा ही नहीं ना अली को। हम तो समझे कि जिस तरह दुनिया में होता है कि हमारा कोई रिश्तेदार अगर कस्टम के मौके में लगा है तो भर के ला 15-20 सूटकेस वो सबको निकलवा देगा। अल्लाह नजरअंदाज कर देगा, अली कहेंगे नहीं, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं एक एक अमल का हिसाब किताब लूंगा। और ये कोई ऐसी मैं अजनबी बात नहीं कह रहा हूं। एक सवाल ये आता है तारीख में, बहुत मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं ये, क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया। मौला को 4.5 साल की जाहिरी हुकूमत भी मिल गई, क्या फायदा हुआ उस हुकूमत का? बहुत सारे इसके जवाब हैं। एक जवाब ये, इस 4.5 साल की हुकूमत ने, वो जो 4.5 साल अली को हुकूमत मिली, इसकी कोई हैसियत थी? खुद मौला ने कहा ये फटा हुआ जूता ज्यादा अहमियत रखता है उस हुकूमत से जो तुम दे रहे हो, ये मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता ज्यादा अहमियत रखता है उस हुकूमत से जो तुम दे रहे हो, और फिर भी उसको लिया तो फायदा क्या हुआ? कम अज कम एक फायदा ये हुआ कि मोमिनीन को ये पता चल गया कि अली का मिजाज क्या है। उस 4.5 साल की हुकूमत में अली ने अपने शियों के कोड़े भी लगवाए हैं, हाथ भी कटवाए हैं, संसार भी कराया है, सारी सजाएं दी हैं। पता चल गया कि अली दीन खुदा के बारे में कभी ये नहीं देखेंगे ये मेरा वाला, ये मेरा वाला नहीं है, अल्लाह देखेगा ये अली वाला है, माफ करवा इसको, लेकिन अली पहले सजा देंगे। 4.5 साल ने बता दिया कि जब अली को हुकूमत मिली तो अली ने कानून सबके लिए कैसा लगाया, शिया हो के गैर शिया हो, चोरी जो करेगा उसका हाथ कटेगा। और इससे रब क्या मिला? ये अली है और यही इमाम जमाना करेंगे, इमाम जमाना और अली, इंशाल्लाह कल से बात शुरू होगी। तो जो हमारे यहां मरहूम मौलाना आसिफ हसन साहब, कहा जाता है शिया मेंबर के सबसे बड़े खतीब, मौलाना कब्बन साहब क़िबला, मौलाना इब्ने हसन नहरवी साहब क़िबला, और इसके अलावा इतने सारे नाम अल्लामा रशीद तुरावी तकलाई, वो भी मजलिसे पढ़ते थे, कितनी एहतियात के साथ पढ़ते थे। और आज हर शख्स अपने जाती ख्यालात को लेके आ जाता और ऐसी ऐसी अपने तरफ से मनगढ़ंत बातें बयान करने लगता है कि मजलिस पढ़ने वाले की फजीलत भी समझिए, आका हुसैन उसका नाम लिखवाते हैं, और मजलिस के जरिए से लोगों को गुमराह करने, ये गलत रिवायत पढ़ने वाला। तो अब इसके बाद में इसीलिए यहां पे एक जुमला मैं कह दूं जो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बाद में पता चला पिछले साल में, जो एक साल अय्याम अज़ा का गुजरा है, हमारे कई उलमा का इंतकाल हुआ। डॉक्टर कल्ब सादिक मरहूम की वसीयत क्या थी कि मेरी मजलिस सही आलिम से पढ़वा, वो ना मिले तो खाली मरसिया पढ़ के खत्म कर दो। उस बयान का कोई फायदा नहीं है जिसमें गलत बातें, इससे बेहतर ये मरसिया निगार का खुद भी बहुत बड़ा रुतबा, लेकिन उसका सवाब ज्यादा मिलता। तो वो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अय्याम अज़ा में हम पे आती, और इंशाल्लाह इसके हवाले से कई बातें इमाम जमाना के मौजू पर कल से शुरू होंगी। तो अली का मिजाज ये और आका हुसैन का बताया हुआ उसूल ये कि हक और बातिल के दरमियान कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब बहुत एहतियात से एक जुमला कह दूं क्योंकि वक्त नहीं रहा, और ये जुमला अगर जल्दबाजी में मैंने गलत सलत कह दिया तो लोग कुछ और समझ बैठेंगे। करबला के वाकये का साख जिम्मेदार यजीद नहीं, यजीद तो है मगर एक सिलसिला है बहुत पहले का। मैं सवाल करता हूं क्विज कंपटीशन, लोग समझते हैं ना कि पैगंबर के बाद इतने मजालिम अहले बैत देखे सब खामोश बैठे थे, वो 12 सहाबी जिन्होंने आला लेना मस्जिद नबवी में जाकर हुक्मरान वक्त को मिंबर से उतारा और हर एक ने पहले एक स्पीच दी, कितने शियों को उनके नाम मालूम। हाँ वो चार के नाम पता है लेकिन वो भी उस हवाले से नहीं पता, सलमान व बूजर व मिकदाद व अम्मार, इसके अलावा आठ और भी, और वाकई उनको पढ़ने वाला बहुत अहम। लेकिन मौलाना का खबरदार, उनके खिलाफ अगर तुमने तलवार निकाली, जुमला सुनिए, अगर तुमने उसके खिलाफ तलवार निकाली, जिससे बड़ा मुजरिम कौन है जो शहजादी या कौन है इनके कोड़ा मार दिया और उनके घर का दरवाजा जला दे। मौलाना का अगर उसके खिलाफ तलवार निकाली तो तुम उससे जंग नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे जंग कर रहे हो। ये मौलाना का जुमला है। रईसुल मुहद्दिसीन, रासुल मुहद्दिसीन, शेख सदूक ने भी लिखा है और अल्लामा तबरसी ने भी लिखा, मुझसे जंग कर रहे हो। और करबला के पूरे वाक़े में मौला के इतने खुतबात हैं कि इतनी बड़ी किताब है, हुसैन के खुतबात करबला से रिलेटेड। एक खुतबे में मौला हुसैन ने उनमें से किसी की जानिब इशारा भी नहीं किया। ये बहुत आज के माहौल में ये चीजें बहुत अहम है समझना। मैं जल्दी जल्दी कुछ ऐसी बात कह गया कि लोग कहेंगे मौलाना के दिल में भी किसी के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है मेरे दिल में, सिर्फ यह है कि मौला अली और आका हुसैन ने किस तरह से करबला के जिहाद को हमारे सामने पेश किया और शहजादी कौनैन पर जुल्म ढाने वालों के हवाले से। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में होंगी, क्योंकि इनको असली सजा देने वाला तो इमाम जमाना है। हमें आपको इन्हें सजा देने की जरूरत नहीं ना, हम दे सकते उनको सजा। तो खैर, बात कल की गुफ्तगु में बहुत अहम जगह से आगे बढ़ेगी, इमाम जमाना और विलायत अली। आज तो मैं ये कह रहा हूं कि समझो, पहले करबला का पूरा वाकया, अली हुसैन के सारे खुतबात पढ़ डाली, उनकी जानिब इशारा भी नहीं, जिनकी जानिब ज़ियारत आशूरा में बाद के मासूमीन ने वजाहत की, वजाहत दी गई। हुसैन ने उस मौके पे कोई जुमला नहीं कहा। हुसैन का सारा खिताब यजीद और यजीदियत से रहा, और इसके लिए हुसैन हर कुर्बानी देने को तैयार है जो उस वक्त जवाब दिया था कि हक और बातें में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, और हम अपनी तादाद की कमी को नहीं देखते, हक वाले हमेशा कम ही रहे। उसी के मुताबिक जब हुसैन जिहाद के लिए चले हैं मदीने से, तो कितने लोग थे हुसैन के, सारी खानदान वाले थे, और कितनी बड़ी हुकूमत से टकराने जा रहा है मेरा आका हुसैन, मगर कोई परेशानी नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, पूरी शान के साथ मदीने से निकले। 28 रजब को हुसैनी काफिला जब मदीने से चला, तो कोई उस वक्त महल्ला बनी हाशिम का मंजर देखता? पूरे महल्ले बनी हाशिम में पहरा लग गया, रसूल का घराना जा रहा है, अली और फातिमा की बेटियां जा रही हैं, हुसैन के अहले हरम जा रहे हैं, 12 बरस का बच्चा भी यहां से न गुजरने पाए। ये वो हैं कि जिनको फरिश्तों ने भी शायद कभी ना देखा, और किस एहतमाम के साथ अमारियां लाई जा रही हैं। एहतमाम का मतलब क्या कि सवारियां आती, सवारियों पर अमारियां भी, अमारियों पे पर्दे भी पड़े, और एक एक सवारी आती, और खाली ये नहीं कि सवारी आई, हर बीबी को सवार करने वाला उसका वारिस भी मौजूद, और बेचैन और बेकरार है। चुनाचे हुसैन ने फिजा के जरिए पैगाम पहुंचवाया, जैनब से कह दो कि अब बीबियों से कहे कि अपनी अपनी सवारी की जानिब आ जाए, और ये बीबियां सवारियों की जानिब आ रही हैं। इधर उम्मे फरवा बाहर निकली, उधर कासिम तड़प के आगे बढ़ते हैं, और एक बार सहारा दे के मां को सवार कराया। उम्मे लैला बैतु शरफ से बाहर आई, 18 साल का गैरतमंद बेटा अकबर तड़प के आगे बढ़ा, सहारा दे के मां को सवार कराया। उम्मे कुलसूम बाहर आती, उम्मे कुलसूम की कोई औलाद नहीं है, मगर 55 बरस की बूढ़ी बहन के लिए 34 साल का भाई औलाद ही की मानिंद है। आका अबुल फजल अब्बास तड़प के आगे बढ़े और उम्मे कुलसूम को सवार कराया, और एक बार जमीन और आसमान कांप के रह गए, इसलिए कि बैतु शरफ से सानिये ज़हरा, ज़ैनब कुबरा, वारिसे फातिमा बिनती अली बाहर आ रही हैं। अब्बास दौड़ के आते हैं, अली अकबर दौड़ के आते हैं, बहन को सवार कराना, फूफी को सवार कराना। आका हुसैन ने रोक दिया, अब्बास तुम नहीं आगे बढ़ो, अकबर बेटा तुम नहीं आगे बढ़ो, जैनब सवार हो रही है, जैनब को हुसैन खुद सवार कराएगा। मेरा मजलूम आका आगे बढ़ा, बड़ा भाई है, मगर किस एहतराम से छोटी बहन को सवारी पे बिठाया, और 28 रजब का काफिला चला। जिन बीबियों ने, اس احترام کے ساتھ اپنے قافلے کو دیکھا ہو جب یہی بیویاں 11 محرم کو کربلا سے چل رہی تھیں اور اس وقت بھی سواریاں تو لائی گئیں مگر ہر ایک کی نگاہ پڑی سواریاں ہیں، کوئی ہماری نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی سہارا دے کے سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ہر بی بی کو مدینے کی رخصتی یاد آ گئی، قاسم کو یاد کیا فروا نے، اکبر کو یاد کیا لیلا نے، ایک بار تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں، قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیلا کہتی اکبر بیٹا تو بھی ماں کو سہارا نہ دے گا؟ بس یہ منظر دیکھنا ہے، علی کی شیر دل بیٹی حسین کی بہن بھی ہے، شریکت الحسین بھی ہے۔ ایک بار آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بیویوں گھبراؤ نہیں، اگر کوئی اور نہ رہا ابھی زینب زندہ ہے، میں تمہیں سہارا دے کے سوار کراتی ہوں، آؤ فروا، آؤ لیلا، آؤ کلثوم، آؤ رباب۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سہارا دیا اور سوار کروایا، لیکن آخر میں جب اپنی باری آئی، ایک مرتبہ بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بڑی حسرت سے بائیں طرف دیکھا، مدینہ یاد آ گیا، عباس بھی دوڑ کے آیا تھا، اکبر بھی دوڑ کے آیا تھا، ارے میرا بھائی حسین بھی دوڑ کے آیا تھا۔ کس سے کہیں، وہ فرات کو دیکھ کے آواز دی، عباس تیری بوڑھی بہن سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ بھائی اتنا کہنا ہے، اتنا کہنا ہے، ارے زینب کیا یہ امتحان دیکھیے، ایک بار بڑی حسرت کے ساتھ کہا، بھائی یہ کہنا ہے کہ میرا مظلوم آقا، میرا بیمار امام، میرا سید الساجدین مولا اس طرح آگے بڑھا، یہ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر کہہ رہا ہے پھوپھی اماں اگر بابا حسین نہ رہے، اگر چچا عباس نہ رہے، ابھی آپ کا بھتیجا سجاد موجود ہے، آئیے آپ کو سہارا دے کے میں سوار کراتا ہوں۔ اجرکم اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، توق ہتھکڑی اور بیڑی میں جکڑے ہوئے اس قیدی کے اس امتحان کا واسطہ، سید سجاد کے چاہنے والے اور ماننے والے، دنیا بھر کے تمام بیمار مومنین و مومنات، خصوصاً جو کورونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، بلکہ مومنین و مومنات کیا کوئی انسان ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً برادر محترم عقیل مرچنٹ صاحب کی بچی بہت بیمار ہے، برادر محترم عدنان کلیم صاحب کی بیٹی وہ بھی بیمار ہے، اور بھی کئی بیمار ہیں، ان سب کے لیے خداوندہ ہماری خصوصی دعا ہے کہ بے حق سید الساجدین ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ انہیں میدان کربلا کے انہیں بکھرے لاشوں کا واسطہ، جنہیں ان کی ماؤں نے یاد کیا تھا، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً مرحوم غلام عباس پنجو صاحب اور یہ مجلس سننے والے مومن چاہے وہ ہال میں ہو چاہے آن لائن ہو، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ اکبر و قاسم کی شہادتوں کا، ہر باپ اور ماں کو اولاد کے ہر امتحان سے محفوظ فرما، لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ خداوندہ دل بہت تڑپتا ہے کہ ہم بھی جہاد کربلا میں شریک ہوں، ہم بھی حسین کے لشکر میں شریک ہوں، ہم بھی عباس کی علم طرح جہاد کریں، تو اس جہاد کو مکمل کرنے کے لیے، دوبارہ علم عباس کی زیارت کرانے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔ Thank you.